मैं बिलाल हूँ। हबशा मेरा वतन था। मेरे अब्बा का नाम रिबाह था, वो भी ग़ुलाम थे, और मेरी अम्मी का नाम हमामा था और वो भी ग़ुलाम थी। गोया मैं ख़ानदानी ग़ुलाम हूँ। जब मुझे मक्का की मंडी में मेरे आका उमैया बिन खल्फ ने ख़रीदा तो जानते हो उन दिनों ग़ुलाम क्या चीज़ हुआ करती थी? भेड़, बकरी, गाय या ऊँट की कुछ कदर थी, लेकिन ग़ुलाम उससे बहुत कमतर था। ग़ुलाम जब बिकता था तो सिर्फ मौत उसे आज़ाद कराती थी। उसकी ज़िंदगी उसके मालिक का हुक्म बजा लाना होता था। ग़ुलाम हुक्म ना मानने का तो कभी ख्याल भी नहीं कर सकता था। मेहनत के बोझ तले आकर ग़ुलाम मर गया तो मालिक की बला से। उसे अगर गम होता तो सिर्फ ये कि उसकी रकम का नुकसान हो गया, वगरना ग़ुलाम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने का कोई दुख नहीं होता था। मैं दो मरतबा ग़ुलाम बना। पहली बार उमैया बिन खल्फ मक्का के एक सरदार ने मुझे ख़रीदा, और दूसरी बार अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे उससे ख़रीद कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दिया। पहले मालिक की ग़ुलामी में जलीलो ख़ार थे, और मुझे इस बेदर्दी से मारा जाता था कि एक मरतबा मुझे इस मार की वजह से मुर्दा समझ कर ही छोड़ कर चले गए। दूसरी ग़ुलामी में मैं इतना मुअज़्ज़ज़ हुआ कि आधी दुनिया के बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे सैयदोना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। ये ग़ुलामी मेरे लिए बादशाही से कम न थी। मुझे सरदार दो जहां की वो खिदमत नसीब हुई जिसे बड़े बड़े सरदारों ने भी रश्क की निगाहों से देखा। मेरा जिस्म दुबला पतला है और कद लंबा है, और मैं दूसरों में ऊंचे दरख्त की तरह नज़र आता। मैं हबशा का रहने वाला हूँ, और अपने मुल्क के लोगों की तरह मेरा रंग काला है। मेरा एक भाई खालिद है, वो भी मुसलमान है। मेरी एक बहन अकिरा है, मेरी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, और बाज़ औक़ात लोग मुझे अबू अमर भी कहते हैं। मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है और बहुत असर करने वाली है। मैं आपको वो बातें सुनाऊंगा जो मैंने खुद देखी या मुझ पर गुजर गईं। मैंने इस्लाम का आगाज़ देखा। मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखों भरी ज़िंदगी भी देखी, और फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुकद्दस साथियों के साथ उसी मक्का में फातिहाना तौर पर दाखिल हुए जहाँ से मक्का वालों ने उन्हें निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने उस दिन उनका ऐलान भी सुना कि अगर कोई उनके ग़ुलाम के झंडे तले भी आ जाएगा उसे अमान दी जाएगी और उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जानते हो उस ग़ुलाम का क्या नाम था? वो मैं था, जिसका नाम बिलाल है। ग़ुलामों की इतनी इज्जत शायद आसमान ने और ज़मीन ने इससे पहले कभी ना देखी थी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपनी नबुवत का ऐलान फरमा चुके थे। मुखालफत की आंधियाँ चलनी शुरू हो गई थीं। काबा में बुतों के हजूम थे, 360 थे या 365, हर कबीला का अलहदा बुत, हर दिन का अलहदा बुत, हर तकरीब का अलहदा बुत, दुखों के बुत, सुखों के बुत, उनमें देवता भी थे और देवियाँ भी। लात, मनात और उज़ा सबसे मुहतरम देवियाँ थीं। सारे अरब के कबाइल हर साल मक्का आते और एक ख़ास महीना ज़ुल्हिज्जा में हज की रसूमात अदा करते। ये वो दिन होते कि जब काबा दारुल अमन होता, कोई किसी को कुछ ना कह सकता, लड़ाई झगड़े सब बंद, कत्ल व खून रेजी के दिल दादा अरब ये दिन बड़े अमन व सुकून से गुजारते। काबा के मजाविरों की कमाई के दिन भी यही होते थे। उन्हीं दिनों मंडी भी लगती। शाम के सौदागर आते, यमन से बहरी ताजर आते। यमन के ताजर अपना माल लाते और इस मुल्क से भी और उस मुल्क से भी, या शायद हर मुल्क से माल आता। ग़ुलाम भी बिकने के लिए आया करते थे। गल्ला, कपड़ा, मिर्च मसाला, माल मवेशी सब बिकते। देवी देवताओं के बुत भी इस किस्म की मंडियों में बिका करते। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि मैं एक मरतबा अबू जहल के ग़ुलाम के साथ काबा की दीवार के साथ तले बैठा था कि अबू जहल वहाँ से गुजरा, हंसते हुए कहने लगा, लो मियाँ, ये है जो अल्लाह मियाँ से बातें भी करता है। अपने मालिक की आवाज़ सुनकर उसका गुलाम तो झट खड़ा हो गया और अपने आका के हुक्म का इंतज़ार करने लगा, लेकिन बात हंसी में उड़ गई। लेकिन पानी पर भी तो चलकर दिखाओ, ये आवाज़ मेरे आका उमैया बिन खल्फ की थी जो आज जहन्नुम में पड़ा जल रहा है। फिर मैंने देखा कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा खामोश और सर झुकाए चले आ रहे हैं और वो काबा से मुड़कर पहाड़ी की तरफ चले गए। लोग कहा करते कि यहाँ एक फरिश्ता आकर उनसे बातें करता है। अबू सुफियान भी वहीं था। वो संजीदा किस्म का आदमी था, यूं ही हंसी में बात उड़ाना उसकी आदत नहीं थी। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। वो सोच रहा था कि इस किस्म का कुफ्र अगर फैलता गया तो हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। उसने अबू लहब को कुछ गुस्से की नज़रों से देखा और उसे कहा, ये तुम्हारा ही तो भतीजा है, इसे सीधा करो, ये तुम्हारे ख़ानदान का फ़र्द है। अबू लहब उस वक्त कुछ नशे की हालत में था, कहने लगा, 40 बरस का हो गया है, ज़रा अकल नहीं आई, है तो मेरा ही भतीजा लेकिन ख़ानदान के नाम को बट्टा लगा गया है, पागल कहीं का, अभी कल अपने गुलाम को बेटा भी बना लिया है। जो कोई उसके दर पर जाता और जो मांगता है कभी इनकार नहीं करता, हर अरे गैरे को खाना खिला देता है, दसियों आकर उसे यूं बेवकूफ़ बनाकर चल देते हैं, किसी को बकरी, किसी को भेड़, किसी को कुछ, किसी को कुछ, खाली हाथ उसके दर से कोई नहीं जाता। मैं क्या करूं, भतीजा पागल हो जाए तो चचा क्या करे। ये कहकर अबू लहब ने अपने इर्द गिर्द साथियों को इस नज़र से देखा कि शायद वो इस मुश्किल का कोई हल बताएं। परेशानी बढ़ती जा रही थी और उसी आलम में अबू सुफियान का बाजू पकड़कर कुछ मुतफक्किर होकर बोला, अबू सुफियान सोचो तो सही, जवान आदमी, मजबूत और सेहतमंद, बीवी भी मालदार और दौलतमंद और शहर में इज्जत और एहतराम, क्या चाहिए और उसे। अब देखो पहाड़ पर गया है, गार में बैठा सर्दी से कांप रहा होगा, समझता है कि फरिश्ता आकर उससे बातें करता है। मैं तो समझता हूँ उसके कान बजते हैं और ये समझता है कि फरिश्ता है। ये बात सुनकर सब फिक्रमंद हो गए, आखिर जुनून तो जुनून है, पागल पागल कह देने से तो किसी का पागलपन जाता नहीं, और कहने सुनने से पागल अच्छे कब हुए हैं। कुछ लम्हों बाद अबू लहब भी फिर फिक्रमंदी के लहजे में बोला, अभी कौन सा ज्यादा अरसा गुजरा है, साल भर पहले की तो बात है, तुम सब उसे जानते थे, उसकी इज्जत भी करते थे, उस वक्त तुम लोग उसका ठठा मखौल भी नहीं उड़ाते थे, और तो और तुम लोग उसके पास अपने झगड़े तक तो तय कराने ले जाया करते थे, आखिर उसे सयाना ही समझते थे ना, तभी तो तुम लोग उसके पास जाते थे। अबू सुफियान बोला, अच्छा ठीक है, हमारे देवी देवताओं तो खुद उससे समझ लेंगे, लेकिन ये जो गरीब फकीर या गुलाम गलमटे उसके साथ चिमटने शुरू हुए हैं, इनसे तो मैं निपटूंगा, जो कंगला कंगाल है उसके साथ हो जाता है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अमार वहां आ गए। अमार कोई अमीर या सरमायादार ना थे, लेकिन गुलाम भी न थे, आज़ाद थे और इस्लाम ला चुके थे। इन जालमों ने उन्हें पकड़ लिया और गिरा लिया, लेकिन उनका सर ना झुका सके। वो भी अगर गुलाम होते तो झुकी गर्दन, नीची आंखों और दोहरी टांगों को अपनी जान की हिफाजत समझते, लेकिन वो तो आज़ाद थे। मगर गुर्बत भी तो जुर्म है, वो गरीब क्यों थे, इसलिए उन सरदारों ने उन्हें पकड़ लिया। इन फिरौनों ने उन्हें कहा कि बताओ मोहम्मद तुम्हें क्या सिखाता पढ़ाता है। उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वो कहते हैं अल्लाह एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, हम सब उसी के बंदे हैं और इसी तरह बराबर जैसे कंघी के दंदाने। ये सुनकर मेरी हड्डियां तक सुन हो गईं। मैंने सोचा, अच्छा हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब बराबर हैं, मैं और उमैया बराबर, अमार, अबू सुफियान और अबू लहब बराबर, लेकिन मैं तो मजबूर था, गुलाम जो हुआ। लेकिन उमैया, उमैया तो सरदारे मक्का था, वो इसे कैसे बर्दाश्त कर लेता। उसकी आंखों में खून उतर आया, चेहरा सुरख हो गया। मैंने सोचा, अमार में ये जुरत कहाँ से आ गई। वो ये भी तो कह सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इबादत की तालीम देते हैं, हमें सच बोलने की नसीहत करते हैं, हमसाया से नेक सलूक करने को कहते हैं, और यही सुनकर ये जालिम उन्हें छोड़ छाड़ देते। लेकिन अम्मार ने तो उन्हें सारी किताब ही खोल कर सुना दी। अबू सुफियान के पास एक कोड़ा हुआ करता था, जब अम्मार ने ये बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमें एक खुदा की इबादत सिखाते हैं और उसके बंदे सब बराबर हैं, तो उसने अम्मार की कमर पर वही कोड़ा रसीद करके कहा, एक खुदा? हमारे तो 360 खुदा हैं, हमारे मुहाफिज और हमारे खालिक और हमारे राजिक। मुझे याद है और खूब याद है कि अबू सुफियान गुस्से में भरा कभी इधर जाता कभी उधर, और फिर अगला लम्हा, हाँ अगला लम्हा, उसी लम्हा मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। अबू सुफियान गुस्से में भरा बक रहा था कि मोहम्मद ये नहीं समझता कि यही बुत हमारी रोजी और हमारी कमाई का बायस हैं। हर साल सारे अरब के कबाइल इन्हीं बुतों की परस्तिश के लिए यहाँ आते हैं, इन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, और फिर हमसे ऐसे ही बुत खरीद कर भी ले जाते हैं। यही हमारे माबूद भी हैं और यही हमारा रिस्क भी है। क्या हम गरीबों और कमजोरों की देखभाल नहीं करते? ऐ अम्मार, क्या तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं मिलता? और देखो अम्मार, अगर हमारे 360 बुतों की जगह एक खुदा आ गया जो ना नजर आता है और ना उसकी आवाज सुनाई देती है, और मोहम्मद कहता है कि वो हर जगह मौजूद है, यहां भी है, वहां भी है, उस बाग में भी, उस घर में भी, मक्का में भी, यसरब में भी और यरूशलम में भी, सूरज में भी और चांद में भी, तो फिर हम मक्का वाले कहाँ जाएंगे? हमारा क्या बनेगा? जब सबका खुदा उनके घरों में ही होगा तो मक्का वाले तो लुट गए, हमको कौन पूछने वाला होगा? सोच तो सही अमार, मोहम्मद की बात क्या हमें बर्बाद न कर देगी? अबू सुफियान की तकरीर से ऐसा मालूम हुआ कि गोया बात ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा आका उमैया बिन खल्फ बीच में कूद पड़ा और मुझे आवाज़ दी। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि उमैया अपनी रेशमी कुबा सरसराते हुए अम्मार के पास पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अबे अम्मार, ये बिलाल, ये मेरा ग़ुलाम, इसे मैंने रकम देकर ख़रीदा है, ये मेरे बराबर है? ज़रा सोच कर बताओ। उमैया का सवाल उसका जवाब क्या था? उमैया और बिलाल बराबर हैं? मेरी तो हैसियत ही कुछ ना थी। उमैया के सवाल के दो जवाब हो ही नहीं सकते थे, एक ही जवाब था, उमैया आका, बिलाल गुलाम। उमैया आसमान, बिलाल ज़मीन, ये दोनों बराबर हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। अमार तो उस वक्त अजीब बुद्धू सा लग रहा था, लेकिन कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं, सब इंसान, सब कौमें, सब नस्लें अल्लाह के हजूर सब बराबर हैं। उसके जवाब के बाद सन्नाटा छा गया। फिर मुझे उमैया की आवाज़ सुनाई दी, बिलाल, और मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि यही आवाज़ मेरी दुनिया बदल देगी। मेरा खुदा, मेरा अल्लाह ही आलिमुल गैब है। मैं बिलाल अपने आका का हुक्म सुनकर आ गया और उसने कहा, बिलाल, इस अहमक को सरदारे मक्का और बिलाल के दरमियान फ़र्क बताओ, ये लो कोड़ा और इसके मुंह पर मारो, उसे समझ आ जाएगी उमैया और बिलाल बराबर नहीं, इनमें फ़र्क है। अमार ने मुझे देखा और बड़े सुकून से मेरी तरफ मुंह करके कहा, और मैं हवास पाख्ता हो गया। और आज भी मुझे वो वाक्या याद है, लेकिन उसे दोहराने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस वक्त मुझे क्या हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था, अम्मार नहीं था, लेकिन एक लम्हा बाद ही मुझे होश आ गया। अमार सुकून और चैन का मुजस्मा मेरे सामने खड़ा था और वो यही लम्हा था कि मेरे आका बदल गए। उमैया बिन खल्फ मेरे जिस्म का मालिक रह गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी रूह कुर्बान हो गई और इस रूह की गुलामी पर आज भी मैं फख्र करता हूँ। अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था। कोड़ा मेरे हाथ से गिर गया, मुझे उन सांसों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जो देखा वो उसे खूब समझ गए और मैं भी समझ गया कि मैं क्या कर गया हूँ। ये एक गुलाम की बगावत थी। अमार झुके, कोड़ा उठाया और मेरे हाथ में थमाकर कहा, बिलाल लो ये कोड़ा और अपने आका के हुक्म की तामील करो, वगरना बिलाल बिलाल ये लोग तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन मैंने कोड़ा फेंक दिया और मेरा दिल चैन और सुकून से भर गया। मैंने उन आंखों से अबू सुफियान को देखा, उसने उमैया को इशारा किया और फिर मैंने हिंदा अबू सुफियान की बीवी को भी देखा, जिसे आज तक मैंने नज़र भर कर न देखा था। वो जहर भरी मुस्कुराहट के साथ हंसी और उमैया अपने गुस्सा की वजह से बोल न सका। चंद लम्हों में तूफान गुजर गया तो बोला, बिलाल मेरे घर में सिर्फ मेरे ही देवताओं के लिए जगह है, वहां कोई और खुदा नहीं आ सकता। और फिर उसने ढलते हुए सूरज पर नजर की और कहा, तुम्हारी मुरम्मत होगी लेकिन आज नहीं, कल। आज सूरज ढल गया है, कल की धूप में तुम बिल्कुल दुरुस्त हो जाओगे। फिर मेरे हाथ रस्सियों से बांध दिए गए, मेरी गर्दन में रस्सी डाल दी गई और जिस खुशी से मैंने उस दिन ये रस्सियां बंधवाईं, उस जैसी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे गुलामों की कोठड़ी में फेंक दिया गया और अब मुझे मौत का इंतजार था। मौत के इंतजार में बहुत से चिराग रोशन हो जाते हैं। मुझे अपने वालिद की याद आई, जबकि वो एक रंगरेज के बड़े बड़े कुड़ाहों में रंगरेजी का काम करते थे। उस हौलनाक मेहनत की वजह से वो कबल अज वक्त बूढ़े हो गए। और फिर मुझे मेरी माँ याद आई, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वो खांसी की मरीज थीं और खांसते खांसते ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मेरे माँ बाप बहीरे कुलजम के उस पार हबशा के मुल्क से लाए गए थे, वो गुलाम कैसे बने ये बात उन्होंने मुझे कभी ना बताई। अलबत्ता मेरी माँ ने मुझे ये ज़रूर बताया कि तुम्हारे हमल के वक्त तुम आज़ाद थे, लेकिन तुम्हारी पैदाइश ग़ुलामी के दौरान हुई। इसी वजह से मुझे हमेशा ये यकीन रहा कि मेरी इब्तिदा तो आज़ादी से ही हुई थी। अब मैं उस अंधेरी कोठरी में रस्सियों में बंधा पड़ा था। मेरी खाल कटी जा रही थी और मैं अगले दिन के सूरज का इंतज़ार में था। मक्का का सूरज मुजरिमों के लिए मौत का पैगाम हुआ करता था। फिर मुझे अमार याद आ गया। क्या ये सज़ा उसने दिलवाई थी? नहीं नहीं, उसने तो मुझे कोड़ा उठाकर दिया था ताकि मैं सज़ा से बच जाऊं। क्या ये मेरा अपना फैसला था? मगर गुलाम को फैसला का हक ही कब होता है? वो तो दूसरों के फैसलों पर अमल करता है। क्या ये मेरी जुरत थी या मेरी हिमाकत थी कि मैंने बगावत कर दी? नहीं, ये मेरी जुरत भी नहीं थी, मैं बेवकूफ भी नहीं था। इसका जवाब तो कुछ और ही था, और वो जवाब था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा देखा था, लेकिन उनसे बात कभी ना हुई थी। जब हज या दूसरे मेले ख़त्म हो जाते तो मक्का फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता, लोग मेरे पास से गुजरते। एक गुलाम की किसी को क्या परवाह थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम उनकी तो बात ही कुछ और थी। वो जब भी पास से गुजरते तो उनकी निगाहों में कुछ अपनाइयत सी होती, लेकिन अब तो वो खुदा का एक अजीम शान निशान थे। मैं अब एक खुदा के बारे में सोच रहा था। मैं उन दिनों जाहिल अनपढ़ था, लेकिन मैं प्यासा था, पानी की तलाश में था, और उस पानी की तलाश में खुदा जाने कहां कहां सरगर्दां था। ऐ मेरे खुदा, लोग कहते हैं कि इंसान खुदा को तलाश करता है, लेकिन ये सही नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, तू इंसान को मुंतखिब करता है, और कौन है जो तेरी मर्जी के बगैर तुझे तलाश करे। और यही वो रात थी जब मैंने तेरी ही मर्जी और तेरी ही रजा से तेरे ही सामने बिलाल को सजदा रेज कर दिया और मैं बिलाल इस्लाम पर ईमान ले आया। अब मेरी रस्सियां, मेरी दर्दें और मेरी तकलीफ मेरी खुशी का बायस बन गई थीं। अब मेरी रूह तराने गा रही थी। अब मैं एक खुदा के हजूर सजदा रेज था और मैं पुरसकून हो गया। अब मैं खुदा के रहम का उम्मीदवार हो गया और मेरे सारे खौफ जाते रहे। अगला दिन चढ़ा और अल्लाह के हुक्म से ही नया सूरज निकला। हर काम अल्लाह ही के हुक्म से होता है। और वो आए और शायद मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनसे रहम की भीख मांग लूं, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो समझे कि शायद मेरी अकल जवाब दे गई है। मगर वो क्या जानते थे कि अब तो मेरा सहारा मेरा वाहिद खुदा था। अब तो जो भी सलूक वो मुझसे करेंगे वही मेरे मौला की मर्जी होगी और मैं उसी पर राजी था। वो मुझे गलियों में घसीटते हुए लिए चले गए। जुल्म आखिर जुल्म है, अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते। घरों की खिड़कियां बंद थीं। लोगों को पता चल गया कि मैंने अपने आका की हुक्म अदूली की है और यही बगावत है और उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उमैया अपनी रकम की कीमत वसूल करना चाहता था, मैं तो उसकी रकम था। वो अपनी रकम यूं कैसे फेंक देता। अब मैं उसके किसी काम का ना था, अब तो सिर्फ मेरी खाल ही उसके काम की थी जो वो उधेड़ देना चाहता था ताकि दूसरे गुलामों के लिए इबरत हो। आज जब इस वाकया को 50 बरस गुजरते हैं मुझे उमैया पर रहम आता है जो दूसरों पर जुल्म करता था अपने आप पर जुल्म करता था। मैं अब इंसान नहीं दो टांगों वाला जानवर था। मुझे जमीन पर लेटा दिया गया, उमैया ने कोड़ा थाम लिया। फिर क्या हुआ, दर्द की कहानी है। देखने वालों ने जो देखा, मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन खुदा मेरा खुदा बे इंतहा कुदरतों वाला है। उमैया मेरे जिस्म को कोड़े मार रहा था, लेकिन वो मेरी रूह को वो कैसे कोड़ा मार सकता था। मुझे आज भी अपनी वो आवाज याद है जिस तरह मैंने खुदा को उस दिन पुकारा। मैंने नमाज के लिए सैकड़ों नहीं हजारों बार मोमिनों को अजान देकर अल्लाह का नाम लेकर बुलाया है, लेकिन उस दिन मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी। मैं एक ही लफ्ज कह रहा था, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और जब भी मैं उसका नाम लेता वो मेरा खुदा मेरा अपना अल्लाह मेरे दिल को जवाब देता। अल्लाह का जवाब दिलों को ही मिला करता है। मैं घोड़े खा रहा था लेकिन मेरी जुबान बंद थी, उसे ताले लग चुके थे। मैं उन जालिमों से रहम की भीख नहीं मांग रहा था, मैं तो अल्लाह से मांग रहा था। अगर इस अजाब के दौरान मैं कहीं मर जाता तो उमैया को बहुत रंज और अफसोस होता कि उसकी रकम इतनी जल्दी जाया हो गई। उमैया मुझे मार मार कर थक चुका था। हिंदा अबू सुफियान की बीवी खुशबू लगाए इठलाती हुई आई। मैं कोड़ों से अधमुआ हो चुका था, लेकिन मेरी जुबान पर अल्लाह का ही नाम था। और उसने झुककर मेरे वो अल्फाज सुने तो हंस कर बोली, लो ये गलमटा तो अब भी अपने ही दीन का प्रचार कर रहा है, और चली गई। कोड़ा फिर बरसने लगा। मौत का मजा जिंदा नहीं जानते, मरने वाला ही जानता है कि मौत क्या है। उस दिन मेरी तकलीफों का खात्मा हो गया। मुझे कोड़ों की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। सीने पर चक्की का पाट रख दिया गया। मेरी पीठ गरम रेत से झुलस गई। मेरा दम लबों पर था। मेरी जुबान प्यास से बाहर निकल आई और उमैया ने कहा, बिलाल कह के लात और उजा तेरे खुदा हैं, तेरे देवता हैं। मैंने जवाब दिया, अहदुन अहदुन, और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे आसमान नजर आया और वहां मैंने सरसब्जो शादाब खेत देखे, फलों और फूलों से लदे हुए बाग देखे, और मैं उन दरख्तों के ठंडे साए में बैठ गया। यहां हर कौम और नस्ल के मर्द भी और औरतें भी फिर रही थीं। और उन सब के सर फखर से ऊंचे थे। और फिर वो मुझे एक चश्मा पर ले गए और मैंने जी भर कर ठंडा पानी पिया और मेरी सारी प्यास बुझ गई और मैं अपने अल्लाह के और भी करीब हो गया। मुझे मालूम नहीं कि यह ख्वाब था या हकीकत थी, या फिर मैं उन कोड़ों की वजह से अपने हवास खो बैठा था। और आज भी मैं खुद से ये सवाल किया करता हूँ, ए बिलाल, ए पिटते हुए बिलाल, क्या वाकई तूने उस दिन बाबरकत और मुबारक रूहों का ही वतन देखा था? अल्लाह ही जानता है कि वो मुझे कब तक मारते रहे और मैं कब तक बेसुध रहा। मुझे यूं कुछ याद पड़ता है कि मैंने सौदेबाजी की बात सुनी। एक करख्त सी आवाज थी जो उमैया बिन खल्फ की थी और दूसरा कोई मुलायम और शीरी सा लहजा था। दिरहमों की बात हो रही थी। मुझे नामालूम सी होश आई। मैंने आंख खोलने की कोशिश की लेकिन मक्का के सूरज ने मेरी नज़र चंधिया दी और मेरी आंखें एक बार फिर बंद हो गईं और मेरे कानों में वही दिरहमों की आवाज़ें आ रही थी। मक्का वालों की तो ज़िंदगी ही दिरहमों के गिर्द घूमती थी, मगर मेरी ज़िंदगी की सब दिलचस्पियाँ ख़त्म हो चुकी थी और मैं अब ऐसी नींद सो जाना चाहता था कि जहाँ उन ज़ालिमों और मूजियों की आवाज़ें मुझे जगा न सकें। इंसान अपने जुल्म की चक्की में दूसरे इंसानों को पीस डालना चाहता है, लेकिन अल्लाह तो मौत देने में भी शफीक है, रहीम है, मेहरबान है। लेकिन अब मुझे एक तीसरी आवाज़ भी सुनाई थी। ये अबू सुफियान था और कह रहा था कि सजा के दौरान ग़ुलाम का सौदा नहीं हो सकता, ये मक्का के रिवाज के खिलाफ है। लेकिन उमैया ने बात काटी और कहा कि नहीं, इसकी जान निकल चुकी है। अबू बकर चाहे तो इस लाश का सौदा मुझसे 100 दिरहम में महंगा नहीं। गुफ्तगू थम गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मेरे करीब आए और मेरा नाम पुकारा। मैंने तेज़ धूप के बावजूद आंख खोल कर उन्हें देखा। उमैया तो भड़क उठा और बकने लगा, अब काले स्याह रू जानवर वहशी सांस ले। मुझे जीता देखकर उमैया की आंखें चमकने लगी और बोला, अबू बकर ये जिंदा है, जिंदा, अब तो 200 लूंगा, लेना हो तो 200 दिरहम गिन दो और ले जाओ। मुझे महसूस हुआ कि मेरी रस्सियां ढीली की जा और बिलाल एक बार फिर बिक गया और कोई नौजवान मुझे सहारा दे रहा था। मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पहचानने की कोशिश की, ये जैद था, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा। मुझ में बात करने की ताकत ही ना थी और ना ही उसकी ज़रूरत थी, जैद ही सब कुछ कह गया। बिलाल, ग़ुलामी की जंजीर कट गई। उमैया खुश था और हंसते हंसते रकम भी गिनता जा रहा था और तन से कहने लगा, अबू बकर मैं तो इसे 100 दिरहम में भी दे देता। और फिर मुझे उसके कहकहों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने अबू बकर को देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ गोया वो नूर का एक चिराग है। और उन्होंने उमैया से कहा, उमैया तुम चौंक गए, तुम धोखा खा गए, तुम 1000 मांगते तो मैं 1000 के लिए भी तैयार था। और अबू बकर ने मुझे जैद की मदद से उठाया और सहारे से ही दोनों मुझे अपने घर ले गए। 5 दिन में मौत व हयात की कशमकश में रहा, कभी होश भी आ जाती लेकिन ज़्यादा वक्त बेहोश और बेसुध पड़ा रहता। मेरे ज़ख्मों पर खुदा जाने कौन कौन सी मरहम लगाई गई। एक मर्तबा मुझे याद पड़ता है कि मैंने कमरे में एक शख्स को दुआओं में मसरूफ देखा, लेकिन फिर मुझे गशी आ गई। 6ठा दिन चढ़ा तो मैं इस काबिल था कि बाहर ताज़ा हवा में आऊं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खुशी देखने के काबिल थी। खुद बकरी का दूध निकाला और मुझे अपने हाथों से पिलाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास बैठकर 3 दिन तक तुम्हारे लिए दुआएं कीं, यहाँ तक कि तुम्हारा बुखार टूट गया और ख़तरा टल गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खुशकिस्मत किसी को नहीं देखा। बिलाल, अब तुम इस्लाम में दाखिल हो, कल हम दोनों उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने जाएंगे। मैं इस्लाम में दाखिल होने वाला पहला गुलाम था और मेरा सर आज उस फख्र से ऊंचा है कि मैं उन कम तरीन लोगों में से था जिसे पत्थरों से निकालकर सुरैया पर पहुंचाया गया। मैं इस्लाम में दाखिल होने वाले इब्तदाई 9 लोगों में से हूं। ऐ अल्लाह, मैं किन लफ्जों में तेरा शुक्र अदा करूं। मैं अब आजाद था, उमैया बिन खल्फ जैसे फिरौन और जालिम के पंजे से निकल चुका था, लेकिन अब मेरा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो चुका था और ये वो गुलामी थी जिस पर मैं हजार आज़ादियां भी कुर्बान कर दूं। सच तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आया फिर उनका गुलाम ही हो गया। मेरा भी यही हाल हुआ। मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से जुदा नहीं होना चाहता था। अब मैं इस्लाम का गुलाम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, अपने खुदा का गुलाम था। अबू बकर मुझे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मैं खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर था। मैंने उन्हें इससे पहले देखा तो था लेकिन अब करीब से देखा। मेरा दिल खुशी और इत्मीनान से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी रोशन थी, आंखें स्याह थीं, लेकिन उनमें शरबती रंग झलकता था। मुसाफहा बड़ी गर्मजोशी से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल बड़ी तेज मगर पुरवकार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। अबू बकर से सारा माजरा सुना तो उन्हें दुआएं दी और मुझे तसल्ली देते रहे। फिर इस्लाम की बातें बताने लगे और एक खुदा की इबादत की नसीहत करते रहे। उसी दिन मैंने दूसरी मर्तबा इस्लाम का नाम सुना, लेकिन अभी मुझ पर उसका पूरा मतलब वाज़े ना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी लाइल्मी को भांप लिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से बोले, बिलाल, खुदा की रजा के हसूल का नाम इस्लाम है। खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। खुदा के बंदों से नेकी करना इस्लाम है, ख्वाह वो किसी मुल्क या किसी रंग और किसी नस्ल के हों। बिलाल, इस्लाम में सब बराबर हैं और ये वो दीन है जो खुदा ने खुद अपने बंदों के लिए पसंद किया है। अब मुझे पता लगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम मेरा दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका थे, मेरे महबूब थे। इस्लाम लाने के बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। अब मैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाँ रहने लगा। ये मक्का के सरदारों में से थे, लेकिन मगरूर और मुतकब्बिर सरदारों वाली कोई बात उनमें ना थी। उनका घर भी कोई बड़ा ना था, रहना सहना बहुत सादा और बेतकल्लुफ था। बातों में बड़े धीमे और मिजाज के नरम थे, जिससे बात करते उसका दिल मोह लेते। आप मक्का के कामयाब और खुशहाल ताजरों में से थे, लेकिन अपना माल दूसरे सरदारों की तरह जुए और शराब और दूसरे बुरे कामों में ज़ाय नहीं करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे, लेकिन उम्र में छोटे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का दावा किया तो औरतों में सबसे पहले खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा और मर्दों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जिस वक्त आप मुसलमान हुए आपके पास 40,000 दिरहम थे। ये बहुत बड़ी रकम थी और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप अपना माल नेकी की राहों पर खर्च करते और उन गुलामों को खरीद कर आज़ाद करते थे जो मुसलमान हो जाते और जिन्हें उनके काफिर और जालिम मालिक मारा पीटा करते। मुझे भी उन्होंने आज़ाद कराया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में थोड़ी सी तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वो मेरे मोहसिन थे और उन्होंने मुझे उमैया बिन खल्फ के जुल्म से आज़ाद कराया था। एक दफ़ा की बात है, मैं अभी उमैया बिन खल्फ के लगाए हुए ज़ख्मों से अच्छा भी नहीं हुआ था कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे लिए बकरी का दूध दोह कर लाए। मैंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे आज़ाद कराया है। मैं हैरान हो गया कि आप उल्टा मेरा शुक्रिया अदा करने लग गए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि गुलाम आज़ाद कराने से अल्लाह ताला खुश हो जाता है। फिर कहने लगे, बिलाल मैंने तुम्हारे लिए एक नया काम सोचा है, क्या तुम उसे कर लोगे? ये काम गुलामी के ज़माना के काम से ज़्यादा सख्त होगा। मैंने जवाब दिया, हाँ मेरे आका, मैं ज़रूर करूँगा। ये सुनना था कि आपके चेहरे का रंग बदल गया और मुझे यूं लगा कि मेरा जवाब सुनकर आपको तकलीफ़ हुई है। आपने दूध का बर्तन हाथ से रख दिया, मेरा कान पकड़कर अपना माथा मेरे माथे से लगाकर मुझे कहने लगे, बिलाल तुम अब आज़ाद हो, तुम्हारा कोई आका नहीं, आज़ादी से जीना सीखो, तुम किसी के ग़ुलाम नहीं हो। मैं संभल गया और कहा, हाँ ये दुरुस्त है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा कान छोड़ दिया और हंस पड़े। उसी वक्त एक बिल्ली अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब आकर आपके पाँव पर लौटने लगी और म्याऊं म्याऊं करके दूध मांगने लगी। आपने अलहदा बर्तन में उसका दूध डाल दिया और वो खुशी से पीने लगी। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं तो शायद बिल्ली को ठोकर मार कर भगा देता। उससे मुझे ख्याल आया कि अभी तो मैंने बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैंने सच्चा मुसलमान बनने के लिए बहुत कुछ करना है। बिल्ली की बात से मुझे एक और वाकया याद आ गया। ये बहुत बाद की बात है, हिजरत के बाद जब तकरीबन सारा अरब मुसलमान हो चुका था और सिर्फ मक्का के कुरैश ही काफिर रह गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का को फतह करने जा रहे थे, मैं भी साथ था। रास्ते में एक जगह एक कुतिया अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए बैठी थी। आपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो रास्ते से हट कर गुजरें, ताकि इस कुतिया और उसके बच्चों को तकलीफ ना हो। आप इंसानों पर ही नहीं, जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम देते थे। आप कहा करते थे, अगर तुमने किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाया तो तुमने अपने लिए जन्नत में जगह बना ली, और अगर तुमने किसी बेजुबान जानवर को तंग किया तो खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा। मैं कहाँ से कहाँ चला गया। बात मैं कर रहा था अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की। आपने मुझे समझाया कि मैं अब आज़ाद हूँ, आज़ाद रहने के लिए मुझे कोई काम सीखना चाहिए। आपने मुझे कहा, अगर मैं तुम्हें कलम बना दूँ तो लिखना सीख लोगे? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये मेरी आज़ाद ज़िंदगी का एक बहुत कीमती लम्हा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे लिखना पढ़ना सिखाएंगे, जो मक्का के बड़े बड़े सरदारों को भी कम ही आता था। इस तरह मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे कलम बना देते, मैं स्याही बनाता, कभी खाल पर लिखता, दरख्तों की छाल पर लिखता, गीली मिट्टी पर लिखता, चूल्हे की बची हुई राख ज़मीन पर बिछा कर लिखता, और तो और मैं हवा में उंगलियों से लिखता रहता। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे सबक देते, मेरे लिखे हुए की इसलाह करते। एक दिन अजीब बात हुई, मैं बैठा स्याही बना रहा था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर से आए। मुझे स्याही बनाता देखकर उनका चेहरा खिल उठा, मेरे स्याही भरे हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। उन्हें एक लम्हा देखा और फिर उन्हें चूम लिया, मुझे अपने साथ बिठा लिया और कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आलम के हाथ की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा कीमती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से चले गए। मैं स्याही बनाने वाले बर्तन के पास बैठा और देर तक अपने स्याही भरे हाथों और उंगलियों को देखता रहा। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आए। मैं सोच रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजीब शख्स हैं, जिसने मुझे इतना बुलंद कर दिया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरे हाथ चूमे। मैं दूसरों की ठोकरें खाने वाला काले रंग का ग़ुलाम, अबू बकर मक्का के सरदार। मेरा दिल भर आया और मेरी आँखों में आंसू आ गए। उन दिनों के हालात मैंने मुख्तसर ही बयान किए हैं, अगर तफसील बताऊं तो बात लंबी हो जाएगी। हम मुसलमान अभी तादाद में थोड़े से थे, इस्लाम की तबलीग भी खुल्लम खुल्ला ना कर सकते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से जो इस्लाम के मुतल्लिक मालूम करना चाहते घर के अंदर मिलते, या शहर से बाहर किसी जगह मुलाकात करते यहां तक कि बाज दफा हमें भी एक दूसरे का पता ना लगता था, क्योंकि उस वक्त हम अपने मुसलमान होने का जिक्र किसी से ना करते थे। उन दिनों इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाना था। जिब्राइल ने शुरू में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज और वुजू का तरीक तो सिखा दिया था, मगर जिस तरह आज हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, ये बाद में शुरू हुई, और रोज़े तो और भी बाद में शुरू हुए। हम या तो अपने अपने घरों में या शहर से बाहर किसी घाटी में 2-2 4-4 मिलकर नमाज पढ़ा करते थे। उन्हीं दिनों एक शख्स अरकम नामी मुसलमान हुए। उनका घर शहर से बाहर था, हम सब वहाँ जमा हो जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ आ जाते थे। हम वहाँ नमाजें पढ़ा करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, उनसे इस्लाम सीखते। हम उस घर को दारुल इस्लाम कहा करते थे। उस वक्त हमारी मुखालफत तो होती थी, मगर चूंकि हम थोड़े थे इसलिए इसमें शिद्दत ना थी। आहिस्ता आहिस्ता कुरैश को ख्याल होने लगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग उनके लिए ख़तरा बन जाएं, इसलिए उन्होंने ज़ोरों शोर से हमारी मुखालफत शुरू कर दी। दुश्मनी की बड़ी वजह यह थी कि मक्का वाले बुत परस्त थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे, और वो सिर्फ एक खुदा को इबादत के काबिल समझते थे। फिर अरब और ख़ास तौर पर बड़े बड़े सरदारों के लिए लोगों पर जुल्म करना, डाके डालना, शराब पीना, जुआ खेलना, कत्ल करना एक आम सी बात थी, जबकि इस्लाम इन बातों से रोकता था। इस्लाम में कोई गुलाम है ना आका, सब बराबर है। इसलिए भी सरदार इस्लाम के दुश्मन हो गए थे। वो कहा करते थे कि कुरान अगर खुदा का कलाम है तो मोहम्मद की बजाय मक्का के किसी सरदार पर क्यों नहीं उतरा। कितने बड़े और अमीर सरदार थे, मगर कितने जाहिल थे कि वो चाहते थे कि नाउज़ु बिल्ला खुदा भी उनकी मर्ज़ी पर चले। इन सारी बातों की वजह से वो हमें तंग करते रहते, और उनकी कोशिश थी कि इस्लाम को ख़त्म कर दें। एक दफ़ा मक्का के सरदार मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए कि वो अपने भतीजे को समझाएं कि वो अपनी बातें बंद कर दे। अबू तालिब ने उन्हें नरमी से समझा कर वापस कर दिया। दूसरी दफ़ा फिर कुछ सरदार इकट्ठे होकर आए और अबू तालिब को कहा कि अगर मोहम्मद इन बातों से रुक जाए तो हम उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक माल देने को तैयार हैं। अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम उन्हें अपना सरदार बनाने पर राज़ी हैं। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर मोहम्मद उन बातों से ना रुके तो हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे, इसलिए अपने भतीजे को समझाओ। उस पर अबू तालिब को फिक्र हुई। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहने लगे, मेरी सारी कौम मेरी मुखालिफ हो गई, अब बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्ज़ी से तो ये काम नहीं कर रहे थे, ये खुदा का हुक्म था, वो उसको पूरा करने से कैसे रुक जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा अगर आप डरते हैं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रखते तब भी जो काम अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किया है उससे नहीं रुकूंगा। जब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का इरादा और हिम्मत देखी तो कहा, मोहम्मद जाओ अपना काम करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ हूँ। अबू तालिब से मायूस होकर कुरैश ने फैसला किया कि हर सरदार अपने ख़ानदान में से मुसलमान होने वाले पर सख्ती करे और उसे मजबूर करे कि वो इस्लाम छोड़ दे। इस तरह मुसलमानों पर बहुत से जुल्म शुरू हो गए। उन दिनों हम पर क्या गुजरती थी, ये दुखों और मुसीबतों की एक लंबी कहानी है। ये तो आंसुओं की दास्तान है। कोई ऐसा जुल्म ना था जो हम पर नहीं हुआ। हमें रस्सियों से बांध कर मारा जाता था। मक्का की तपती हुई पथरीली ज़मीन पर आवारा लड़के हमें घसीटते फिरते और बड़े बड़े पत्थरों की सिले हमारी छाती पर रख कर ऊपर चढ़ जाते। हमारा खाना बंद कर दिया जाता और कहा जाता, जब तक इस्लाम नहीं छोड़ोगे तुम्हें भूखा रखा जाएगा। जालिमों ने हमारे कई मुसलमान भाइयों को तकलीफें दे दे कर शहीद कर दिया। मक्का के सरदार यूं तो बहुत बहादुर बनते थे, मगर हाल ये था कि बूढ़ी मुसलमान औरतें भी उनके जुल्म से महफूज न थीं। हमारी एक बहन सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों के सामने उसके खावंद को शहीद कर दिया, फिर उसको भी इतने जख्म लगाए कि उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। ये बातें मुख्तसर बता रहा हूँ, तफसील इसलिए नहीं बता सकता कि मुझे अपने शहीद बहन और भाई याद आ जाते। और तो और, खुद मेरे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जुल्म से बचे हुए ना थे। कभी कुरैश उनके गले में कपड़ा डालकर दोनों तरफ से इतना खींचते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस घुटने लगता। कभी नमाज पढ़ते हुए आपके सर पर ऊंट की ओझड़ी रखते थे जो इतनी भारी होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से भी सर ना उठा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते, कभी आपके घर में गंद फेंकते, आपके दरवाजे पर कांटे बिछा देते कि बाहर निकलने में तकलीफ हो। जब इस पर भी मुसलमानों ने इस्लाम को ना छोड़ा बल्कि एक एक दो दो करके काफिर मुसलमान होने लगे तो कुरैश का गुस्सा और जुल्म मजीद बढ़ गया। मुसलमानों पर इतना जुल्म होते देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बेहतर होगा कि मुसलमान मक्का से बाहर चले जाएं। इसके लिए उन्होंने मेरे मुल्क हबशा को पसंद किया और कहा कि इस मुल्क का बादशाह अदल और इंसाफ करने वाला है, उसके मुल्क में जुल्म नहीं होता। जो मुसलमान जाना चाहें वो वहाँ चले जाएं। पहली दफ़ा 11 मर्द और 4 औरतों पर मुश्तमिल काफिला हबशा गया। इन जाने वालों में से बहुत से लोग कुरैश के ताकतवर कबीलों से ताल्लुक रखते थे। इसी बात से तुम समझ गए होगे तो मुसलमान जो ताकतवर कबीलों से ताल्लुक रखते थे वो भी जुल्म और सितम से महफूज ना थे। गुलामों या गरीबों के पास तो जाने के लिए सामान ही ना था, वो कैसे सफर करते। इसलिए मैं भी हबशा ना जा सका। ये लोग छुप छुप कर मक्का से निकले और समंदर की तरफ चल पड़े। जब शैबिया की बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें हबशा जाने वाला जहाज मिल गया और वो रवाना हो गया। जब कुरैश को पता चला कि कुछ मुसलमान उनसे बचकर निकल गए हैं तो उन्होंने पीछा किया, मगर उस वक्त तक जहाज रवाना हो चुका था। कुरैश भी आसानी से हार मानने वाले न थे। उन्होंने अपने कुछ सरदारों का वफद हबशा भिजवाया। ये सरदार वहां के पादरियों और दरबारियों से मिले और कीमती तोहफे देकर उनसे कुछ को अपने साथ मिला लिया। कुछ दिन के बाद ये वफद बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह को बहुत से तोहफे पेश किए और अर्ज की कि हमारे शहर के कुछ लोगों ने मुल्क में फसाद डाल दिया है और एक नया मजहब बना लिया है। हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। उनमें से कुछ लोग वहां से भागकर आपके मुल्क में आ गए हैं। आप हुक्म दें कि हम उन्हें वापस ले जा सकें। बादशाह ने जवाब दिया, मैं यूं ही तो उन्हें वापस नहीं कर सकता। ये लोग मेरी पनाह में हैं। मैं उनकी बात सुनकर फैसला करूंगा। अगले दिन बादशाह ने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया, उनसे पूछा कि बताओ ये क्या किस्सा है। उन मुसलमानों में अबू तालिब के बेटे हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, बात यह है कि हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, बुरे काम करते थे, अपने से कमजोरों और गरीबों पर जुल्म करते थे। फिर खुदा ने हम में एक रसूल भेजा, उसने हमें उन बुराइयों से रोका और नेक काम करने को कहा। हमें बताया कि खुदा एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। हमने उसकी बातें सुनी और वो बातें हमें अच्छी लगी। हमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की इबादत शुरू कर दी और बुरे कामों से तोबा कर ली। अच्छे काम करने की कोशिश में लग गए। उस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमें मारने पीटने और हम पर जुल्म करने लगी। ऐ बादशाह, अब हम उस जुल्म से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह लेने आए हैं, मगर उन्होंने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बादशाह सारी बात समझ गया। उसने जाफर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, फिक्र ना करो, तुम मेरी पनाह में हो, तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। हाँ, मुझे वो कलाम तो सुनाओ जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयात बादशाह को सुनाई। ये आयतें सुनकर बादशाह के दिल पर इतना असर हुआ कि वो रो पड़ा। उसने कहा, खुदा की कसम, ये तो वैसा ही कलाम है जैसा हमारे नबी यसू मसीह पर उतरा था। फिर बादशाह ने कुरैश से कहा, जाओ, मेरे मुल्क से निकल जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। उधर मक्का में मुसलमानों पर जुल्म व सितम इस तरह जारी थे। एक दिन की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल का वहां से गुजर हुआ। उसने आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देनी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे और एक लफ्ज भी जवाब में ना कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा की ये खादमा ने सारा वाकया देखा। थोड़ी देर के बाद हमजा, जो शिकार को गए हुए थे, वापस आए। जब घर पहुंचे तो खादिमा ने कहा कि आप शिकार खेल रहे हैं और आपके पीछे अबू जहल आया था और आपके भतीजे को गालियां देते हुए अभी यहां से गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके सुनते रहे और जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह सुनकर हमजा के तन बदन में आग लग गई और खादिमा से पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है? उसने जवाब दिया, इसमें शक की कोई बात ही नहीं, सारा वाकया मेरे सामने हुआ है। ये सुनते ही हमजा उल्टे कदमों बाहर निकले और खाना काबा की तरफ चले गए, जहां अबू जहल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। जाते ही जोर से उसके सर पर अपनी कमान मारी और कहा, मुझे पता चला है कि तुमने आज मेरे भतीजे को गालियां दी हैं और उसने तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। ये उन गालियों का जवाब है। ये भी सुन लो कि मैं भी आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। उसका खुदा मेरा खुदा है, जो वो कहता है वही मैं कहता हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अबू जहल के साथी उसकी हिमायत में बोलने लगे, मगर अबू जहल हमजा की बहादुरी और जुरत देखकर डर गया और उसने अपने साथियों को ये कहकर रोक दिया कि नहीं, मुझसे ज्यादती हुई थी। हमजा दुरुस्त कहते हैं, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, यूं बात तो खत्म हो गई। हमजा अपने घर आ गए। जोश में तो ये कह आए थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। जब गुस्सा कम हुआ तो सोचने लगे, ये मैंने क्या कह दिया। देर तक सोचते रहे, दिल तो पहले ही इस्लाम की अच्छी बातों को मान चुका था, एक झिझक बाकी थी। आखिर यही फैसला किया कि बुत परस्ती छोड़ देनी चाहिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। हमजा के मुसलमान होने पर हम बहुत खुश थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो तो इतने खुश हुए कि खाना काबा में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और खुदा के एक होने का ऐलान किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के इस ऐलान पर कुरैश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो को इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। हम उन्हें उठाकर घर लाए। यूं इस्लाम पर मसाइब का दौर भी गुजरता गया और अपनी तारीख रकम करता चला गया। हमजा के बाद उमर ईमान लाए, शेब अबी तालब की महसूरी का वाकया गुजरा, गम का साल आया, ताइफ की वादी ने भी अपना जुल्म ढा लिया, मगर इस्लाम का ये नूर फैलता ही गया। मदीना की तरफ हिजरत का अहम वाकया हुआ और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना में हिजरत की। और ये हकीकत भी है कि हमारी अंधेरी रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना 14वीं के चांद के चढ़ने से भी ज्यादा खुशी की बात थी। खुदा का नबी, खुदा का प्यारा, हमारा महबूब, हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से यसरब पहुंच गया था। वो अपने शहर पहुंच गया था, वो शहर जिसकी किस्मत में खुदा के नबी की पनाहगाह होना लिखा था। उस दिन के बाद से हम उसे यसरब की बजाय मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी का शहर कहने लगे। और अब तो शायद बहुत से लोगों को इल्म ही ना हो कि कभी इस शहर को यसरब कहा जाता था। अब हम आज़ाद थे, मुसलमान आज़ाद थे, अपने अल्लाह की मर्जी पर चलने के लिए, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने के लिए और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आमद के बाद सबसे पहले हिजरत करके आने वाले लुटे पुटे महाजरीन को मदीना के रहने वाले अंसार के सपुर्द किया और एक एक महाजर को एक एक अंसार का भाई बना दिया। इसे उर्फ़ आम में मुआखात कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू रुवैहा खसामी रजी अल्लाहु अन्हु का भाई बनाया और हमारा ये ताल्लुक जो खुदा के नबी ने बांधा था हमेशा कायम रहा। और हम दोनों एक दूसरे को सगे भाइयों से भी बढ़कर चाहते और प्यार करते थे और जिस हद तक मुमकिन होता एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते थे। मैं जो मक्का का एक बेकीमत गुलाम था जिसे कोई अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करता था, आज इस्लाम की बरकत से
ایک معزز برادری کا فرد بن چکا تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کے لیے بالکل آزاد تھے، اور اسی مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد ایک مسجد کی تعمیر شروع کی، جس کے لیے تمام مہاجرین اور انصار نے بڑے جوش و خروش سے کام کیا، اور کرتے بھی کیوں نہ، جبکہ ان کا محبوب آقا خود ان کے ساتھ تعمیر کے کاموں میں مصروف تھا۔ میں وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ میں بھی ان کاموں میں شریک تھا، اور اپنی ہمت کے مطابق پورے جوش اور جذبے سے یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسجد جو آج ہم تعمیر کر رہے ہیں، کل اسی میں اللہ تعالیٰ مجھے مؤذن کے طور پر اذان دینے کی سعادت بھی عطا کر دے گا۔ چنانچہ جب نماز باجماعت کا آغاز ہوا تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے اور اکٹھا کرنے کے طریقے بھی سوچے جانے لگے۔ بعض کا خیال تھا کہ نماز کا وقت ہونے پر آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے سے لوگوں کو خبر کی جائے، بعض نے کہا کہ جھنڈا بلند کیا جائے، اور بعض نے ناقوس بجا کر اطلاع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کی رویا کے مطابق اذان دینے کے طریق کو پسند فرمایا، اور مجھے بلا کر ارشاد فرمایا کہ اذان کے کلمات سیکھ کر نماز کے اوقات میں ان کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کروں۔ یہ میری زندگی کی سب سے عظیم سعادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، کہ میں مسجد نبوی میں مؤذن کے طور پر مامور کر دیا گیا۔ چنانچہ اپنا یہ فرض سر انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو فطری طور پر مجھے اونچی اور پرسوز آواز عطا کی تھی، اور کچھ درد میری آواز میں اس محبت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا تھا جو مجھے اپنے پیارے آقا اور اسلام سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ میری آواز میں اذان سننا پسند کرتے تھے۔ عورتیں اپنے کام چھوڑ کر اذان سننے لگتیں، اور بچے میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں جانتا ہوں کہ یہ سب لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے، اور یہ اسلام کا پیغام ہی تھا جس نے مجھے ایسے محبت کرنے والے وجود عطا کر دیے، ورنہ میں تو صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہجرت کے پہلے سال سے لے کر 11 ہجری تک باقاعدگی سے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سوائے شاز کے اس تواتر کو کبھی نہیں توڑا۔ ہاں، مدینہ سے میری غیر حاضری کی صورت میں اذان دینے کی ذمہ داری عبداللہ بن ام مکتوم کے سپرد ہوتی تھی۔ بعض حالات میں صبح کی نماز کے لیے مدینہ میں دو اذانیں بھی ہوتی تھیں، مثلا رمضان المبارک میں ایسی صورت میں پہلی اذان میں دیا کرتا تھا جو نماز کے وقت سے کافی پیشتر ہوتی تھی، جبکہ دوسری اذان جو نماز کے لیے ہوتی تھی وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد اسلامی لشکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ واپس آ رہا تھا کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگانے کی ذمہ داری لے؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جاگ کر یہ ذمہ داری ادا کروں گا اور صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دوں گا۔ یوں سب لوگ بے فکر ہو کر سو گئے، اور میں نے جاگنے کا ارادہ کر کے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر تو نماز میں ہی گزر گئی، اور اس کے بعد میں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تاکہ صبح کے آثار دیکھتے ہی سب کو جگا دوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ باوجود سب تدبیروں کے میری بھی آنکھ لگ گئی، اور جب صبح لوگوں نے مجھے جگایا تو دن طلوع ہو چکا تھا۔ ہم سب نے دن چڑھنے کے بعد نماز فجر ادا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی دلی کیفیات کو بھانپ کر نماز کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا رہ جائے اور نماز قضا ہو جائے تو جس وقت آنکھ کھلے فوراً اس نماز کو پڑھ لے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر بہت ہولناک مظالم ڈھائے گئے تھے، اور اب جبکہ مسلمان ہجرت مدینہ کر چکے تھے، ان مظالم کا سلسلہ ایک اور رنگ میں شروع ہو گیا۔ کفار مکہ نے اسلام کو نابود کرنے کے ناپاک ارادے سے مدینہ کی طرف حملے کرنے شروع کر دیے، اور اس سلسلہ میں بہت سے معرکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے اب ہم سب بڑی بے جگری کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمیشہ کفار کو ذلت آمیز شکست دیتے تھے۔ میں جو اپنے آقا کا ایک کمزور سا غلام تھا، میں بھی ہر ایک معرکے میں اپنے آقا کے ساتھ شریک رہا اور جس حد تک خدا نے توفیق دی اپنی خدمات پیش کرتا رہا۔ غزوہ بدر اس سلسلہ کا سب سے پہلا معرکہ تھا جو مدینہ کے قریب بدر نامی مقام پر پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں صرف 313 نہتے مجاہدین نے 1000 مسلح کفار کو عبرتناک شکست دی۔ اور یہ غزوہ میرے لیے اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ اسی غزوہ کے بعد جب کفار شکست کھا کر اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان بھاگنے والوں میں میرا ظالم مالک امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو بھاگتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں لا نجاؤ تو ان نجا امیہ کا نعرہ لگا کر اور اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کا پیچھا کیا اور اسے جا لیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلام کا یہ بدترین دشمن خاک و خون میں لتھڑا ہوا زمین پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی امیہ تھا جو خود کو خدا سمجھا کرتا تھا اور اپنی طاقت کے زوم میں کمزور اور مجبور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، جانوروں کی طرح انہیں پیٹتا تھا، گلیوں میں گھسیٹتا تھا اور گلے میں رسی ڈال کر محلے کے لڑکوں کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اس مظلوم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ اور آج وہی ظالم اپنے گناہوں کی پاداش میں بدر کے میدان میں بے یار و مددگار پڑا تھا اور اس عبرتناک انجام کا وہ خود ذمہ دار تھا، کیونکہ ظلم کے جو بیج اس نے اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے لازم تھا کہ وہ ان کا کڑوا پھل بھی کھاتا۔ سچ ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی بڑھ جائے اس کی قسمت میں مٹنا ہی لکھا ہے، پس ظلم کا ایک سیاہ باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان اور بھی بہت سے غزوات ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک موقع پر میں بھی اپنے آقا کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑنے والوں میں شامل تھا۔ غزوہ احد اور غزوہ غطفان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ غزوہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میں بھی دیگر اصحاب کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام کرتا رہا۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ کی طرف روانگی کے لیے بھی حضور نے اعلان کرنے کے لیے مجھے ہی چنا اور فرمایا کہ اے بلال، مسلمانان مدینہ کو آگاہ کر دو کہ جو شخص بات ماننے والا اور اطاعت کرنے والا ہے وہ فوراً تیار ہو جائے اور نماز بنو قریظہ کی آبادیوں میں پہنچ کر ادا کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرمائی، اور مکہ میں داخلے کے وقت بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے میں ان چند خوش نصیبوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھے ایک عظیم اعزاز سے بھی نوازا۔ آپ نے اپنے اس کمزور غلام کے بارے میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ میں خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ وہ کمزور غلام جو کل تک مکہ کی گلیوں میں خود بے امان تھا آج اہل مکہ کے لیے امان کی ضمانت بن گیا تھا۔ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے آج میری امان کے محتاج تھے۔ واقعی خدا تعالیٰ کے کام انسان کے فہم اور ادراک سے بہت بالا ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مجھے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دوں اور خدائے واحد کا نام اس بستی میں بلند کروں جہاں چند سال پیشتر خدا کا نام لینے پر مظالم کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ وہ کیفیت بیان سے باہر ہے کہ میں نے یہ اذان کس طرح دی۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں خدائے واحد کا ذکر کرنے پر مجھے تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے، میرے ساتھیوں کو کوئلوں پر جلایا جاتا تھا اور بعض کو اس جرم کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ آج اسی مکہ کے مرکز سے جب میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا تھا تو بے اختیار یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ واقعی بہت بڑا ہے جس نے اپنے رسول کو ہزاروں مخالفتوں اور طوفانوں کے باوجود فتح عطا فرمائی اور کوئی جتھا اور گروہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکا۔ میری آواز جوں جوں بڑھ رہی تھی اس کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور بتوں کے پوچھنے والے نادان کفار مکہ کے دل اذان کے ایک ایک لفظ پر کانپ سے جاتے تھے۔ وہ جو 360 بتوں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے تھے اب یہ جان چکے تھے کہ حقیقی خدا ایک ہی ہے اور ان کے بت اس کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے تو بعد میں یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے کہ میرا باپ بہت پہلے مر گیا تھا، ورنہ آج وہ کعبہ سے بلند ہونے والے الفاظ شاید برداشت نہ کر پاتا۔ میں خوش قسمت تھا کہ میں آج مکہ کی گلیوں میں خدا کا نام بلند کرنے کی توفیق پا رہا تھا، اور یہ آواز لمحہ بلمحہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اور یہ آواز لمحہ بلمحہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تھا، اور اسی زندگی میں یہ تکلیف وہ دن دیکھنا بھی مقدر تھا کہ مجھے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تھا، اور اسی زندگی میں یہ تکلیف دہ دن دیکھنا بھی مقدر تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب آقا سے جدائی کا دکھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے آقا کی وفات پر میری زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکلے تھے کہ کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، اور اگر جنم دیا تھا تو کاش میں آج سے پہلے مر گیا ہوتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑتا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں جو ہر نماز کی اذان دینے کے بعد اپنے پیارے آقا کے دروازے پر جا کر یہ صدا دیا کرتا تھا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 روز قبل جب آپ کافی علیل تھے، آپ کے دروازے پر گیا اور حسب معمول نماز کے لیے اطلاع دی۔ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت اور غیر حاضری کے تصور سے درد کی جو کیفیت مجھ پر گزری وہ بیان سے باہر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ ابھی ہمارا منتظر تھا۔ اور بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن وہ واقعہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کیا ہوئی، ہماری تو دنیا اندھیر ہو گئی، مدینہ تاریک ہو گیا۔ مدینہ تاریک ہو گیا اور ہمارا پیارا آقا ہمیں الوداع کہہ کر اپنے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہو گیا۔ حسان بن ثابت نے تو یہ شعر کہہ کر اپنی دلی کیفیت بیان کر دی کہ کنت السواد علی ناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، یعنی اے رسول تو میری آنکھ کی پتلی تھا اور تیری وفات کے سبب میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو تیری وفات کا خوف تھا جو واقع ہو گئی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم سب کی یہی حالت تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر، جس کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے، اسے صرف وہی دل جان سکتا ہے جو ایسی کسی کیفیت سے گزرے۔ حضور کی وفات کے بعد مدینہ مجھے ایک ویرانے کی طرح لگتا تھا، اور جب بھی باہر نکلتا تھا درد کی کیفیت بہت بڑھ جایا کرتی تھی، کیونکہ مدینہ کی ہر گلی ہر موڑ سے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جاتی تھی۔ میرے لیے اب اس بستی میں رہنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز ہمت کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے شامی سرحدوں کی طرف ہونے والے جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میرے دکھ میں کچھ کمی واقع ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری درخواست سنی اور پھر بڑی محبت سے مجھے مدینہ میں ہی رہنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، اس بڑھاپے میں ہمیں جدائی کا داغ نہ دو اور یہیں مدینہ میں ہی رہو۔ خلیفہ وقت کا یہ ارشاد سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور شام جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے مسجد نبوی میں اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پا کر مجھ پر سخت رقت طاری ہو جاتی تھی اور میں اذان مکمل نہ کر پاتا تھا۔ یہ محبت کی دنیا کے قصے ہیں، عام آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک عاشق صادق اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جان سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر میں مدینہ میں رک گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے اذان دینا بند کر دیا۔ مدینہ سے ہجرت اور وفات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات آپ نے سنے اور دیکھا کہ کس طرح ایک معمولی غلام کی زندگی سے وہ سیدنا بلال بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر آپ مدینہ میں رک گئے، لیکن اداسی اتنی تھی کہ آپ کے لیے مدینہ میں رہنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ خلیفہ اول کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت بلال نے ایک مرتبہ پھر اپنی درخواست آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کی دلی کیفیات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کی طرف جانے کی اجازت دے دی اور آپ مدینہ سے رخصت ہو کر شام چلے گئے، جہاں اسلامی لشکر کے ساتھ آپ نے بعض مہمات میں حصہ بھی لیا۔ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کیں لیکن آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدنا بلال کی وفات دمشق میں 20 ہجری میں قریباً 70 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کو باب الصغیر کے قریب ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان دمشق میں بہت معروف ہے اور زائرین کا ایک ہجوم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم خود بھی جب اس مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے پہنچے تو ایک عجیب کیفیت ہماری منتظر تھی۔ بہت سی قبروں کے درمیان ایک مزار بنا ہوا تھا جس کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا تھا، وہاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اپنے عظیم آقا اور اس کے عظیم غلام کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں معمور ایک شخص نے اذان دینا شروع کی اور خوبصورت اذان سے مزار کا وہ کمرہ گونجنے لگا۔ یہ بلالی اذان تو نہیں تھی، لیکن الفاظ وہی تھے جن کا بلال کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور اٹوٹ تعلق تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مزار میں ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ وہاں موجود ہر ایک آنکھ نم تھی اور مؤذن کی صدا بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اپنے عظیم آقا اور اس کے عظیم غلام کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں معمور ایک شخص نے اذان دینا شروع کی اور خوبصورت اذان سے مزار کا وہ کمرہ گونجنے لگا۔ یہ بلالی اذان تو نہیں تھی، لیکن الفاظ وہی تھے جن کا بلال کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور اٹوٹ تعلق تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مزار میں ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ وہاں موجود ہر ایک آنکھ نم تھی اور مؤذن کی صدا بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔